प्रश्नोत्तरी। इस दुनिया में कई लोग पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाना चाहते हैं और हमें इंटरनेट के साथ भिन्न भिन्न माध्यम से प्रश्नों को भेजते हैं। यहां हमने कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है, जो सबसे ज्यादा पूछे गए प्रश्न या महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर एक, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और मुझे लगता है कि मैंने पापों की संपूर्ण माफी पाई है। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति बचाया गया है वह परमेश्वर का मंदिर है। हर बार जब मैं गुमराह हुआ और मैंने पाप किया, तब पवित्र आत्मा ने मेरे पापों से मुझे माफी दिलाने के लिए मुझ पर दोष लगाकर अंगीकार करने में मेरी मदद की और परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता पुनर्स्थापित किया। मैं यह सीखा हूं कि यदि मैं यह न करूं तो परमेश्वर मुझे दंड देगा। क्या यह सच है कि यदि हम हमारे पापों को अंगीकार न करें और पापों की माफी न पाए तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं रहता? उत्तर, यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का अंतर्निवास हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, चाहे हम कुछ धार्मिक कार्य करें या ना करें। दूसरे शब्दों में, यह हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता है। फिर इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? पवित्र आत्मा व्यक्ति के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि वह अपने पापों को स्वीकार करता है और अपने लिए क्षमा करता है। इसके बदले पवित्र आत्मा हमेशा के लिए उस व्यक्ति के अंदर रहता है जिसने पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके पापों के लिए माफी पाई है। पवित्र आत्मा भी उस व्यक्ति में नहीं रह सकता जिनके अंदर थोड़ा सा भी पाप बचा है। हालांकि बहुत से लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा उनमें तभी बसता है जब वे अपने पापों को स्वीकार करते हैं और क्षमा की भीख मांगते हैं, और यदि वे ऐसा नहीं करते तो वह उनके अंदर नहीं रह सकता। यह निश्चित रूप से गलत है। बाइबल कहती है कि वह पिंतिकुस्त के दिन प्रेरितों के ऊपर आया था, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त किया था, बल्कि इसलिए प्राप्त किया था कि उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा अपने पापों के लिए माफ कर दिया गया था। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है और वह धर्मी लोगों पर आती है जिन्हें उनके पापों के लिए माफी प्राप्त करने के लिए पवित्र किया गया है। पवित्र शब्द से बाइबल का मतलब पाप से अलग होना है। अपने पापों को कबूल करना और जब भी आप अपराध करते हैं तो क्षमा की प्रार्थना करना परमेश्वर की दृष्टि में संपूर्ण क्षमा नहीं है। कैसे कोई कह सकता है कि वह बिना चूक के अपने सारे पापों को परमेश्वर के सामने कबूल कर सकता है? केवल वे जो मानते हैं कि परमेश्वर की योजना के मुताबिक यीशु को यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया गया था और उनके उद्धार के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया था, वही परमेश्वर से उपहार के रूप में पवित्र आत्मा के अंतर्निवास के साथ अपने पापों की संपूर्ण माफी पा सकता है। हालांकि बहुत से लोग अपने प्रयासों के माध्यम से पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे अपने दिलों में पापों के लिए पूर्ण क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लोगों पर सच्ची पवित्र आत्मा पापों को कबूल करने से नहीं आता है। वह उन पर अपने आप केवल तब आता है जब वे पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके अपने सारे पापों से माफी पाए। परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाने के लिए यह विश्वास का अनिवार्य घटक है। पवित्र आत्मा हमारी ओर से किए हुए किसी भी तरह के प्रयास या काम से नहीं आता है। वह उस व्यक्ति पर आता है यदि उसके पापों को पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पूरी तरह से माफ कर दिया गया हो। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने लगभग 2000 साल पहले यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा अपने बपतिस्मा से जगत के सारे पापों को उठा लिया था, तब हम हमारे पापों से माफी पाते हैं। पवित्र आत्मा केवल उस व्यक्ति में निवास करता है जो इस तरह के विश्वास को दर्शाता है। वह ऐसे व्यक्ति में नहीं रह सकता जिसके दिल में पाप है। यह सच है, यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा का अंतर निवास पाने के लिए सच्चे सुसमाचार में विश्वास करने के बजाय हर बार जब वे पाप करे तब अंगीकार की प्रार्थना करे, तो वह कभी भी पवित्र आत्मा नहीं पा सकता है। इससे केवल यही पता चलता है कि यीशु पर विश्वास करने के बावजूद अभी भी उसके दिल में पाप है। शैतान वह है जो हमारी निंदा करता है। रोमियो अध्याय 8 वचन 1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। भले ही कोई दावा करता है कि उसने पापों की माफी और पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है, लेकिन यदि वह पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके अपने पापों की माफी नहीं पाया है तो अभी भी उसके हृदय में पाप है। यही कारण है कि आपको पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त करने के लिए पानी और आत्मा के सुसमाचार का सही ज्ञान होना चाहिए। यदि आप पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप पॉल सी जोंग के पहले खंड को पढ़ें। क्या वास्तव में आपका पानी और आत्मा से नया जन्म हुआ है? प्रश्न नंबर दो, यदि व्यक्ति पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करे तो क्या पवित्र आत्मा हमेशा के लिए नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के अंदर रहेगा, या फिर पवित्र आत्मा उनके इर्द गिर्द घूमेगा और जब वे मदद मांगेंगे तब उनके अंदर आएगा? उत्तर, पवित्र आत्मा सहायक है। दूसरे शब्द में, सत्य की आत्मा जिसे परमेश्वर ने उन सभी धर्मी लोगों के लिए दिया है जो पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाए हैं। जब से यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया था, उनकी मृत्यु हो गई और वह पुनरुत्थित हुआ। इफिसियो अध्याय 1:13 में कहा गया है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा उन धर्मी लोगों पर आता है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की माफी पाई है, और इस तरह उन्हें परमेश्वर की संतान के रूप में छाप लगाई गई है। यूहन्ना अध्याय 14:16 में प्रभु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु के चेलों ने यह विश्वास करते हुए अपने सभी पापों के लिए माफी पाई कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को उठा लिया। यही कारण है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, यूहन्ना अध्याय 1:29 में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत के पाप वे सभी पाप है जो इस दुनिया के सारे लोग जगत के शुरू से लेकर अंत तक करते हैं। उसने एक ही बार में जगत के सारे पापों को स्वीकार कर लिया, क्रूस पर मर गया, पुनरुत्थित हुआ और इस तरह उसने हमें हमेशा के लिए धर्मी बना दिया। इब्रानियों अध्याय 10:12-14 में लिखा है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। यूहन्ना द्वारा प्रभु को बपतिस्मा दिया गया था, फिर क्रूस पर चढ़ा, फिर पुनरुत्थित हुआ और फिर हमें हमेशा के लिए धर्मी बनाया। हमें एक ही बार में हमारे सारे पापों के लिए माफ कर दिया गया और यीशु के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए, और यह सत्य सभी अनंत काल के लिए अपरिवर्तनीय है। जो लोग विश्वास के माध्यम से धर्मी बन गए हैं उनके दिल में पाप नहीं है। भले ही लोग अपनी कमजोरियों के कारण पाप करते हैं, लेकिन उनके पास हमेशा के लिए कोई पाप नहीं है क्योंकि यीशु ने उनके सभी पापों को दूर कर दिया है, इसलिए वे फिर कभी पाप नहीं बन सकते। पवित्र आत्मा पवित्र किए गए धर्मी लोगों के दिल में सदा के लिए बसता है। हम अपनी कमजोरियों के कारण केवल पाप करते हैं, लेकिन अगर हम हर बार पाप करते हैं तो यीशु मसीह का उपहार जिसने हमें हमेशा के लिए धर्मी बना दिया बर्बाद हो जाएगा और उसे हमारे पापों को स्वीकार करने के बाद फिर से हमारे लिए मरना होगा। यह पवित्र आत्मा की निंदा करने का पाप है। इब्रानियों अध्याय 6:4-8 और इब्रानियों अध्याय 10:26-29। इसके अनुसार पवित्र आत्मा धर्मी लोगों के भीतर रहता है जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त की है और नया जन्म पाया है। पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6:16 में कहा, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर की संतान में निवास करता है जिन्हें हमेशा के लिए पवित्र किया गया है। यहां निवास शब्द का अर्थ यह नहीं है कि वह हमारे चारों ओर मंडराता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं और उसके लिए पुकारते हैं तो वह हमारे पास आता है। इसके बजाय इसका मतलब है वह हमेशा हमारे अंदर रहता है। वह हमेशा उन लोगों में रहता है जिन्होंने पानी और आत्मा से नया जन्म पाया है, उन्हें सारी चीजें सिखाता है और उन्हें परमेश्वर के वचन जानने में अगुवाई करता है। इसलिए जिस किसी के पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा नहीं है वह उसका जन नहीं है। पवित्र आत्मा उन लोगों में बसता है जो शुद्ध और पाप रहित है, उन्हें सभी स्वर्गीय चीजें सिखाता है और गवाही देता है कि वे परमेश्वर की संतान है। यह सच नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारे निकट है, हमारे स्वयं के प्रयासों के लिए एक मूल्य के रूप में हमारे पास आ रहा है। इसके बजाय वह हमेशा परमेश्वर की संतानों में बसता है जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा नया जन्म पाया है। हालांकि बहुत से लोगों को इसके बारे में ज्ञान की कमी है और वे अपने पापी दिलों के साथ पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप वे सोचते हैं कि जब वह पश्चाताप की उत्कट प्रार्थनाओं का प्रयास करते हैं तो वह उन पर आता है, लेकिन जब वह पाप करता है तो वह छोड़ देता है। यह उन लोगों का विश्वास है जिन्हें पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है। जिनके अंदर सच्चा विश्वास है वे विश्वास करते हैं कि पापों की माफी के माध्यम से वे पवित्र आत्मा के अंतर्निवास को उपहार के तौर पर पा सकते हैं। व्यक्ति को अपने स्वयं के विचारों को त्यागना चाहिए और परमेश्वर के वचन में विश्वास पर वापस लौटना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, मेरे माता पिता यह दावा करते हैं कि उनकी शादी के पहले से वे नया जन्म पाए हुए मसीह हैं। इसके अतिरिक्त मैंने उन दोनों से आत्मिक जीवन की अगुवाई पाई है। मुझे लगता है कि मैं जब पैदा हुआ तब से पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालांकि मैं बहुत ही परेशान हूं क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाने के लिए बाइबल का ज्ञान नहीं है। क्या पवित्र आत्मा केवल तब व्यक्ति के ऊपर आता है जब वह पानी और आत्मा से नया जन्म पाए? उत्तर, हां यह सच है। सारे लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके अपने पापों से माफी पाने की आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है कि पानी उद्धार का प्रतिरूप है। यह पानी यूहन्ना के द्वारा यीशु ने लिए बपतिस्मा को दर्शाता है। सबसे पहले पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए सबको यीशु के बपतिस्मा का अर्थ जानने के द्वारा अपने सारे पापों के लिए माफी पाने की आवश्यकता है। गलातियों अध्याय 3:27 कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यहां मसीह में बपतिस्मा लेना हमारे पानी के बपतिस्मा को नहीं दर्शाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि यूहन्ना के द्वारा यीशु के बपतिस्मा को समझकर और विश्वास करके पापों की माफी पाना। हर कोई पापमय शरीर में जन्म लेता है। रोमियो अध्याय 5:12 कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। इस दुनिया में सभी लोग पापी है जिन्हें आदम और हव्वा से पाप विरासत में मिले हैं। इसलिए भजन संहिता अध्याय 51:5 में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यशाया 1:4 में लिखा है, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। लोगों के पाप का बीज उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से वे पैदा होते हैं। इस दुनिया में सभी लोग अपने माता पिता से पापों को प्राप्त करते हैं और पापियों के रूप में इस दुनिया में पैदा होते हैं। दूसरे शब्दों में हमारा शरीर हमारे जीवन भर पाप का फल देने के लिए बाध्य है। इसलिए यह सोचना कि यदि किसी के शारीरिक माता पिता दोनों नया जन्म पाए हुए मसीह है तो उनके बच्चों को भी पवित्र आत्मा प्राप्त होगा, यह केवल एक अंधविश्वास है। जिसके पास इस प्रकार का विश्वास है वह अपने विचारों के माध्यम से पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है और पवित्र आत्मा का अंतर्निवास इस प्रकार के विश्वास के साथ कभी नहीं मिलता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यीशु ने दिए हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। यह पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लेकर जगत के सारे पापों को उठा लिया, फिर क्रूस पर उसका न्याय किया गया और इस तरह उसने सारे विश्वासियों को धर्मी बनाया। यह मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की योजना है और उसने उन लोगों को पवित्र आत्मा का अंतर्निवास दिया है जो उसकी इच्छा के मुताबिक विश्वास करते हैं। इस दुनिया में हर कोई अपने पाप के साथ पैदा हुआ है, इसलिए वह पवित्र आत्मा को उपहार के रूप में केवल तभी प्राप्त कर सकता है जब वह पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त करता है और पवित्र हो जाता है। इसलिए सभी को इसे ध्यान में रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि पवित्र आत्मा उन पर केवल तब आता है जब वह पानी और आत्मा से नया जन्म पाए। वह किसी तरह की शर्त या हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर हमारे पास नहीं आता, लेकिन उसका अंतर्निवास पूरी तरह से व्यक्ति की विश्वास योग्यताओं पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में वह किसी भी मानवीय या आत्मिक उपलब्धि के आधार हमारे पास नहीं आता। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा का अंतर्निवास विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसकी इच्छा यह थी कि यूहन्ना के द्वारा यीशु के बपतिस्मा और उसके क्रूस पर मरने के द्वारा मनुष्य जाति को जगत के सारे पापों से बचाने के लिए वह यीशु को इस जगत में भेजे, जिससे पवित्र आत्मा विश्वासियों के दिल में बसने की अनुमति देता है। धर्मी जन जो उसकी इच्छा का पालन करने और पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके अपने सारे पापों से छुटकारा पाए हुए हैं, वे पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पा सकते हैं। इसलिए यह विश्वास करना कि किसी ने पवित्र आत्मा को सिर्फ इसलिए प्राप्त किया है क्योंकि वह नया जन्म पाया हुआ माता पिता से पैदा हुआ है, यह एक अंधविश्वास है। यह वैसा ही है जैसा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करना। यदि कोई पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहता है तो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रश्न नंबर 4, मैं सोचता हूं कि पवित्र आत्मा हर दिन हमसे बात करता है। आरंभ की कलीसिया के समय में भी यीशु के चेलों ने कई चमत्कार किए थे। मैं सोचता हूं कि जो पवित्र आत्मा उन दिनों में काम करता था वो आज भी इस समय उसी रीति से काम करता है। इसलिए कई परमेश्वर के जन आज भी चमत्कार करते हैं, उदाहरण के तौर पर दुष्ट आत्माओं को निकालना या चंगाई देना और लोगों को यीशु की ओर वापस लाने के लिए अन्य दूसरे चमत्कार करना। मुझे लगता है कि यह कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं। यदि यह सच नहीं है तो आरंभ की कलीसिया के समय पवित्र आत्मा जो कार्य करता था उनमें और आज जो चमत्कार होता है उनमें क्या अंतर है? क्या परमेश्वर कल, आज और हमेशा के लिए एक जैसा नहीं है? उत्तर, आरंभ की कलीसिया के समय में कार्य करते पवित्र आत्मा और अभी के समय में कार्य करने वाले पवित्र आत्मा में कोई अंतर नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय चमत्कार करने वाले लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं या नहीं। इसका कारण यह है कि भले ही परमेश्वर की आत्मा हमेशा एक समान ही है, लेकिन अंतर यह है कि क्या व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा पाने के लिए सटीक ज्ञान है। बहुत से लोग आजकल पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए सटीक बाइबल ज्ञान के बिना चमत्कार करते हैं। बाइबल हमें प्रेरितों के काम अध्याय 2:38, पहला यूहन्ना अध्याय 5:2-8 और पहला पत्रस अध्याय 3:21 में दिखाती है कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करना है। उसी पानी का दृष्टांत भी, यानी कि बपतिस्मा, अब तुम्हें उद्धार देता है। बेशक पवित्र आत्मा ने शुरुआती कलीसिया के समय में प्रेरितों के भीतर रहने के दौरान बीमारियों को ठीक करने और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने जैसे काम किए थे। हालांकि वे अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करते समय पैसे नहीं कमाते थे या हंगामा नहीं करते थे जैसे आजकल कुछ लोग करते हैं। प्रेरितों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन केवल सुसमाचार देने के साधन के रूप में किया। इसके अलावा बीमारी की चंगाई और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना शुरुआती कलीसिया के समय में पवित्र आत्मा के सारे कार्य नहीं थे, वे इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा था। इसलिए यह सोचना बहुत खतरनाक है कि आज के मसीहियत में सभी चमत्कार जैसे कि चंगाई, दुष्ट आत्माओं को निकालना और अन्य भाषा में बोलना निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के कार्य है। हमें विश्वास करना चाहिए कि आज हम मसीहियत में जो भी अजीबोगरीब घटनाएं देखते हैं वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कारण नहीं है। इसके बजाय हमें परमेश्वर के सच्चे सेवकों को समझना चाहिए जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है, और दुष्ट आत्माग्रसित सेवकों को भी पहचानना चाहिए। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकता है, बीमारी को ठीक कर सकता है और अन्य भाषा में बोल सकता है, लेकिन यदि उसके दिल में पाप है और सच्चे सुसमाचार में विश्वास नहीं करता तो वह निश्चित रूप से दुष्ट आत्माग्रसित है। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7:20-23 में भी कहा, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझमें से हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति केवल चमत्कार करता है तो वह पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से कर रहा है। इसके बजाय हमें बारीकी से उसकी जांच करनी चाहिए कि क्या वह अपने पापों से माफी पाने के द्वारा पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करता है या नहीं करता। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में कभी नहीं रह सकता जिसके दिल में पाप है। पवित्र आत्मा पाप के साथ नहीं रहता। आरंभिक कलीसिया के समय पापों की माफी पवित्र आत्मा के आने का प्रमाण था और वह उन लोगों के लिए परमेश्वर का उपहार था जिन्हें उनके सभी पापों के लिए क्षमा कर दिया गया था। हालांकि बहुत से लोग अभी भी सोचते हैं कि चंगाई, अन्य भाषा में बोलना और दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से बाहर निकालना बिना शर्त पवित्र आत्मा का काम है। यह एक गलत और खतरनाक धारणा है। हमें स्पष्ट रूप से यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि क्या वे वास्तव में चमत्कार कर रहे हैं। भले ही कोई व्यक्ति यीशु के नाम में कई चमत्कार करने में सक्षम है, लेकिन अगर वह पानी और आत्मा के वास्तविक सुसमाचार को जानता या विश्वास नहीं करता तो वह झूठा शिक्षक है। ऐसे लोग कई लोगों की आत्माओं को मारते हैं और अपने सांसारिक लालच को पूरा करने के लिए धन की मांग करते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के दिल में पाप है उसका काम वास्तव में पवित्र आत्मा का काम नहीं है, बल्कि दुष्ट आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा जो शुरुआती कलीसिया में काम करता था और जो अभी काम कर रहा है वह एक ही है। हालांकि पवित्र आत्मा के कार्य में एक स्पष्ट अंतर है जो उन लोगों को दिखाई देता है जिन्होंने वास्तव में पवित्र आत्मा को पाया है, और वह अंतर है झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा दुष्ट आत्मा का कार्य प्रकट होना। प्रश्न नंबर 5, पवित्र आत्मा इस समय क्या कर रहा है? उत्तर, इस समय पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन में असत्य से सच्ची शिक्षाओं को समझाने का काम करता है। वह परमेश्वर ने हमें दिए हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार उन आत्माओं को बचाने के लिए करता है जो इस समय अपने अपराधों के कारण मुश्किली में है। हमें पता होना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में मसीहियत के अंदर कई झूठे भविष्यवक्ता काम कर रहे हैं। उनके दिलों में पाप होने के बावजूद भी वे बुरा काम करते हैं, अन्य भाषा बोलना, झूठे चमत्कार करना और दर्शनों को देखना। इस युग की भ्रमित आत्माओं के लिए पवित्र आत्मा सहायक दुनिया को पाप का और न्याय अंगीकार करवाता है। यूहन्ना अध्याय 16:8। सबसे पहले सच्चाई की आत्मा मनुष्य जाति को पाप का अंगीकार करवाती है। परमेश्वर की दृष्टि में पाप पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास न करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। वह उन लोगों को अंगीकार करवाता है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर के उसके लहू के खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास नहीं करते। उन्हें चेतावनी देता है कि वे नरक के लिए नियोजित पापी है। वह परमेश्वर की धार्मिकता का भी गवाह है। यहां परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ है कि परमेश्वर ने यीशु को मनुष्य के रूप में इस संसार में भेजा कि वह संसार के सभी पापों को स्वीकार करे। वह उन लोगों की मदद करता है जो यीशु पर विश्वास करते हैं और पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पाप की क्षमा प्राप्त करते हैं। वह यह भी चेतावनी देता है कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा को जानने के बावजूद सच्चे सुसमाचार का पालन नहीं करते हैं, बाद में उनका उनके पापों के लिए न्याय किया जाएगा। आरंभ में जब परमेश्वर ने अपने वचन से दुनिया की सृष्टि की तो पवित्र आत्मा ने उसके साथ काम किया, और बाद में पानी और आत्मा के सुसमाचार को प्रकाशित करने के लिए मनुष्य जाति के खाली और भ्रमित दिलों पर सच्चाई की रोशनी डाली। उत्पत्ति अध्याय 1:2-3। इस प्रकार पवित्र आत्मा भ्रमित आत्माओं को उनके पापों के बारे में, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में और उनके पापों के न्याय के बारे में उजागर करता है। प्रश्न नंबर 6, क्या अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा के अंतर निवास का सबूत नहीं है? तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि वह हमारे अंदर रहता है? उत्तर, हम इस बात के लिए निश्चित नहीं हो सकते कि व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है इसलिए उसे पवित्र आत्मा का अंतर्निवास मिला है। यहां तक कि दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग भी अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शैतान लोगों को यीशु मसीह के नाम से अजीबोगरीब भाषा में बुलवा सकता है। अगर हम कहते हैं कि अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा के अंतर्निवास का प्रमाण है तो यह निश्चित रूप से एक बाइबल के दृष्टिकोण से गलत है और हमें पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा के पाप में डाल देता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12:30 कहता है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। वह किसी भी तरह से पाप के साथ नहीं रह सकती और न ही वह उस व्यक्ति में बस सकती है जिसके दिल में पाप है। हमें यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि किसी ने पवित्र आत्मा को केवल इसलिए प्राप्त किया है क्योंकि वह अन्य भाषा में बोलता है, लेकिन पहले यह जांचना चाहिए कि क्या उसने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पाप की क्षमा प्राप्त की है। यदि कोई सोचता है कि उसने पवित्र आत्मा को सिर्फ इसलिए प्राप्त किया है क्योंकि उसके पास कुछ विशेष अनुभव है जैसे कि अन्य भाषा में बोलना, तो यह हो सकता है कि उसे शैतान के द्वारा धोखा दिया जा रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों पत्री अध्याय 2:10। पवित्र आत्मा एक ऐसा उपहार है जो परमेश्वर द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उसके वचनों के द्वारा पाप की माफी पाई है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है और सत्य की आत्मा है, इसलिए वह पानी और आत्मा के सुसमाचार के साथ मिलकर काम करता है। वह मनुष्य की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। वह पापियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। धर्मी को सत्य की बातें सिखाता है और चुपचाप सुसमाचार का प्रचार भी करता है, जो परमेश्वर की इच्छा है। वह आग जैसी भावनाओं या शरीर के अपरिवर्तनीय कंपन वाले अनुभव के साथ लोगों पर नहीं आता। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को धर्मी लोगों को दिया, जिनके पापों को पानी और आत्मा के सच्चे सुसमाचार का पालन करके दूर किया गया है। उसने उन्हें सिखाया कि वे परमेश्वर की संतान बन गए हैं। पवित्र आत्मा धर्मी के दिलों में गवाही देता है कि वे पानी और आत्मा के सुसमाचार के माध्यम से पाप रहित और संपूर्ण धर्मी बन गए हैं। इसलिए यदि कोई अन्य भाषा में बोलता है लेकिन फिर भी उसके दिल में पाप है, तो वह आत्मा निश्चित रूप से पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन शैतान की आत्मा है। यदि आप अपने हृदय में पवित्र आत्मा का अंतर निवास पाना चाहते हैं, तो आपको पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। तब प्रभु आपको पवित्र आत्मा के साथ रहने की आशीष देगा। प्रश्न नंबर 7, क्या यीशु के चेलों ने पाप की माफी के द्वारा, उनके पापों से छुटकारा पाने के द्वारा पवित्र आत्मा पाया था, या वह पाप की माफी के बगैर एक अलग अनुभव था? उत्तर, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना छुटकारे से अलग अनुभव नहीं है। हम बाइबल में देख सकते हैं कि यीशु के चेले पहले से ही जानते थे और मानते थे कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से पहले ही यीशु ने यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लेकर जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया था। पहला पत्रस अध्याय 3:21 में लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी यानी बपतिस्मा अब तुम्हें उद्धार देता है। पापों की माफी का अर्थ है पाप से मुक्ति। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि हमारे दिल में सारे पाप धुल चुके हैं और चले गए हैं। आजकल कई मसीही अक्सर पाप की माफी के अर्थ के बारे में भ्रमित होते हैं जो यीशु ने हमें दिया है। लोग नहीं जानते कि वे पाप की माफी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें उनके पापों से केवल इसलिए मुक्ति मिली है क्योंकि वे यीशु को अपना परमेश्वर मानते हैं। जिन लोगों ने अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त की है, वे अपने आप में गवाही रखते हैं। हालांकि यदि किसी के पास उसके छुटकारे की गवाही के शब्द नहीं है, तो उसे पवित्र आत्मा नहीं मिला है और न ही उसके सभी पापों के लिए माफी दी गई है। यदि उसके मन में भावनाएं हैं, तो यह केवल अपनी भावनाओं से धोखा खाने का परिणाम है। शैतान उन्हें सच्चाई से भटकाने के लिए खुद को प्रकाश के एक दूत में बदल देता है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11:14-15 और गलातियों की पत्री अध्याय 1:7-9। जो लोग अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त कर चुके हैं, उनमें गवाही है क्योंकि वे पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5:4-12 में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह का साक्षी है जो पानी और लहू से आया था। इसके अलावा वह कहता है कि यदि कोई एक अलग आत्मा या अलग सुसमाचार के बारे में प्रचार करता है, तो उसे ना तो पाप की क्षमा मिली है और ना ही पवित्र आत्मा मिला है। लोग केवल तभी पापों की माफी पा सकते हैं जब वे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा आया था। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना पाप की क्षमा के लिए महत्वपूर्ण है। पाप की क्षमा पवित्र आत्मा के अंतर निवास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का मतलब क्या है? उत्तर, हमें यीशु के बपतिस्मे का कारण जानना चाहिए। जब पौलुस ने सुना कि उन्हें केवल यूहन्ना का बपतिस्मा दिया गया है, तब उसने कुछ इफिसुस के रहने वालों को यीशु के बपतिस्मा के सुसमाचार का प्रचार किया। उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया था और पौलुस ने यीशु के बारे में जो कहा था, उस पर विश्वास करने के द्वारा उन्होंने अपने दिल में पवित्र आत्मा पाया था। यूहन्ना से यीशु ने जो बपतिस्मा पाया था, वह और यूहन्ना का पश्चाताप का बपतिस्मा दोनों अलग अलग थे। यीशु का बपतिस्मा पापों को धोना था, जो सीधे हमारे पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से संबंधित था। फिर यूहन्ना के बपतिस्मा की प्रकृति क्या थी? वह चिल्लाया, हे सर्प के वंशों, पश्चाताप करो, अन्य जाति के देवताओं को छोड़ दो जिसकी तुम उपासना करते हो, और परमेश्वर की ओर वापस लौटो। उसका बपतिस्मा पश्चाताप का था, जिसने लोगों को परमेश्वर की ओर लौटा दिया। हालांकि यूहन्ना के द्वारा यीशु का बपतिस्मा जगत के सारे पापों को उठाने के लिए था। यूहन्ना के बपतिस्मा और यूहन्ना के द्वारा यीशु के बपतिस्मा में यह अंतर है। यीशु का बपतिस्मा सारी धार्मिकता को पूरा करना था। फिर वह कौन सा बपतिस्मा है जिसने सारी धार्मिकता को पूरा किया है? यह वह बपतिस्मा है जिसके द्वारा यीशु ने आदम से शुरू होकर संसार के अंत तक के मनुष्य जाति के सारे पापों को उठाया है। दूसरे शब्दों में, यूहन्ना के द्वारा यीशु का बपतिस्मा सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए था। सारी धार्मिकता को पूरा करने का मतलब है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा दिया और हमारे लिए न्याय को सहन करने के लिए क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जी उठाया और सारे विश्वासियों को पवित्र किया। यह सब मनुष्य जाति के लिए किया गया था। यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू ने हमें अनंत उद्धार, हमारे सारे पापों से माफी और हमेशा परमेश्वर के साथ जीने का मौका दिया। यह परमेश्वर की धार्मिकता, प्रेम और सारे मनुष्य जाति के लिए उद्धार है। यहां हम पुष्टि कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू के माध्यम से पूरा हुआ था। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने के लिए हमारे पास यह विश्वास की गवाही होनी चाहिए कि जगत के सारे पाप यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उस पर डाले गए थे। प्रत्येक व्यक्ति जिसने यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू पर विश्वास करके पाप की माफी पाई है, उसे यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। इसलिए हमें यीशु के बपतिस्मा में हमारे विश्वास के प्रमाण के रूप में और उनकी आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती अध्याय 28 वचन 19। जगत के सारे पापों को दूर करने के लिए यीशु को यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा दिया गया था, और क्योंकि यह सत्य लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9। पुराने और नए नियम में कैसे पवित्र आत्मा अलग अलग रीति से दिखाई दिया है? उत्तर, पवित्र आत्मा हर समय एक सा ही परमेश्वर है, इसलिए चाहे हम पुराने या नए नियम में पढ़े, उससे उसकी दैवीय प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यह सच है कि उन्होंने मनुष्य जाति को उनके पापों से बचाने के लिए परमेश्वर की भविष्यवाणी के द्वारा पुराने और नए नियम में अलग अलग तरीके से काम किया। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने वचनों को बोलने के लिए अलग तरीके से परमेश्वर के जन के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला, ताकि वह चमत्कारों के द्वारा अपनी इच्छा को बता सके और अपना कार्य कर सके। उदाहरण के लिए, प्रभु की आत्मा शिमशोन न्यायी के ऊपर मंडराने लगी, जिससे उसके द्वारा कई पराक्रमी कार्य किए गए। न्यायियों अध्याय 13 वचन 25 और अध्याय 14 वचन 19। दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा पुराने नियम के सुसमाचार में चुने हुए लोगों पर आया था। हालांकि नए नियम के समय में पिंतेकुस्त के दिन को पवित्र आत्मा के आने के शुरुआती समय के तौर पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हर उस संत के पास भेजा जिसने पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपने विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त की थी, और वह पवित्र आत्मा को उनमें हमेशा के लिए रहने की अनुमति देता है। इसलिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पहले पिंतेकुस्त पर प्रेरितों को पवित्र आत्मा से भर दिया गया था। उसके बाद उन सभी धर्मियों को जिनके पापों को सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करके माफ किया गया था, वे पवित्र आत्मा के अंतर निवास को पा सकते हैं। प्रेरितों अध्याय 2 वचन 38। पत्रस रोम के एक अन्य जाति और दरोगा कर्नेलियस के घर में गया और यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू के सुसमाचार का प्रचार किया। जब पत्रस सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, तब पवित्र आत्मा हर उस व्यक्ति पर उतरा जिन्होंने वचन को सुना। प्रेरितों अध्याय 10 वचन 34 से 45। यह इस बात को साबित करता है कि जिस पल व्यक्ति यीशु के बपतिस्मा और उसके क्रूस पर के लहू के सुसमाचार पर विश्वास करता है, जिसे यीशु ने परिपूर्ण किया है, तब वह एक उपहार के रूप में पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उन सभी धर्मियों के अंदर निवास करने के लिए दिया जिनके पाप सुसमाचार पर विश्वास करने की वजह से माफ किए गए थे। पुराने नियम में पवित्र आत्मा ने लोगों को यीशु की ओर अगुवाई करने की भूमिका निभाई, और नए नियम में पवित्र आत्मा परमेश्वर की धार्मिकता का गवाह है और उसके लिए निश्चितता देता है। परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब है कि यीशु ने जगत के सारे पापों को अपने बपतिस्मा और क्रूस पर के अपने लहू से माफ कर दिया, और पवित्र आत्मा उद्धार के सुसमाचार की निश्चितता देता है और हर एक व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करता है उसकी मदद करता है। प्रश्न नंबर 10। जब डॉक्टर ने कहा कि मुझे पेट का कैंसर है, तब मैंने कई दिन दुख में बिताए। एक दिन मेरे एक मसीह मित्र ने मेरी मुलाकात ली और मुझे कहा कि उसकी कलीसिया में जो कोई भी जागृति की सभा में हिस्सा लेता है, वे किसी भी प्रकार के रोगों से चंगा हो जाता है। मेरे लिए, जो उस समय नास्तिक था, उसके लिए परमेश्वर के सामर्थ्य चंगाई को पाना अच्छा और सच्चा था। सभा के आखिरी दिन प्रत्येक व्यक्ति सेवक के पास हाथ रखवाने के लिए गया। जब वह मुझ पर हाथ रखा था, तब उसने मुझे पश्चाताप करने के लिए कहा और पूछा कि क्या मैं यीशु की चंगाई की सामर्थ्य पर विश्वास करता हूं। भले ही मैं मेरे दिल में विश्वास नहीं करता था, फिर भी मैंने हां में उत्तर दिया, और उसी समय मैंने महसूस किया कि कुछ करंट सा मेरे अंदर चला गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मुझे लगा कि मेरा कैंसर ठीक हो चुका है। मैंने उसी समय प्रभु पर विश्वास करने का फैसला किया। उसके बाद बड़ी खुशी और शांति मेरे हृदय में आया और मैंने नया जीवन शुरू किया। मैंने सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने आप को समर्पित किया। मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा ने यह सब किया है और मैं विश्वास करता हूं कि वह मेरे अंदर निवास करता है। क्या आपको नहीं लगता है कि यह वैसा ही है? उत्तर, आपको वास्तव में एक अद्भुत अनुभव हुआ है। मैंने लोगों से ऐसे कई बयान को सुना है जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर के उत्तर का अनुभव करने के बाद अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है। हालांकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह अद्भुत अलौकिक अनुभव इस बात का पक्का सबूत हो सकता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? हकीकत में आजकल कई मसीही ऊपर दिए गए प्रश्न का उत्तर हां में देंगे। जब पश्चिमी मसीहत भौतिकवाद के विकास के बीच गिरावट में था, तब तथाकथित पेंतिकुस्त करिश्माई आंदोलन का उद्भव हुआ और मसीहियत में विशेष रूप से विकसित या विकासशील देशों में काफी सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप कई मसीही पेंतिकुस्त करिश्माई आंदोलन के प्रभाव में आ गए, जो अलौकिक अनुभव के महत्व पर बल देता था। जो लोग जागृति की सभाओं का नेतृत्व करते हैं, वे कभी कभी दुनिया भर में जागृतिवादी सुसमाचार प्रचारक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, क्योंकि उनके पास अपने स्वयं के आश्चर्यजनक प्रमाण है और अपने अनुभवों के माध्यम से अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, इसलिए उनके अनुयायी उनके जैसे अनुभव आधारित विश्वास का अनुसरण करते हैं। हालांकि बाइबल ऊपर के प्रश्न के लिए ना कहती है। बेशक पवित्र आत्मा में हमें अलौकिक अनुभव देने की क्षमता है। हालांकि क्योंकि वह सत्य का आत्मा है, इसलिए हम सत्य के वचन से ही पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। पेंतिकुस्त के दिन पत्रस ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया और यह कहते हुए सुसमाचार का प्रचार किया, प्रेरित अध्याय 2:36, परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। फिर यह सुनकर यहूदियों ने पत्रस और दूसरे प्रेरितों से कहा, प्रेरितों अध्याय 2:37, हे भाइयों हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, प्रेरित अध्याय 2:38-39, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह पवित्र आत्मा को उस धर्मी व्यक्ति के उपहार के रूप में देगा जिसने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके पापों की माफी पाई है। किसी के हृदय में पवित्र आत्मा के अंतर निवास का एकमात्र प्रमाण सत्य का वचन है। क्या आपको पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा पापों की माफी पाई है? यदि ऐसा है तो सुनिश्चित होना चाहिए कि पवित्र आत्मा का अंतर निवास आपके अंदर है। हालांकि यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने अद्भुत अनुभव है या आपने कितने चमत्कार किए हैं। यदि आपके हृदय में पाप है तो आपने निश्चित रूप से पवित्र आत्मा को नहीं पाया है। कारण यह है कि आपके पास सत्य के वचन के आधार पर पाप की माफी का गवाह नहीं है। जैसे प्रकाश में अंधेरा नहीं पाया जा सकता, वैसे ही पवित्र आत्मा न तो पापी पर आ सकता है और न ही पापी के अंदर रह सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा सच्चा अंतर निवास केवल उन लोगों के लिए होता है जिनके पाप पानी और आत्मा के सुसमाचार से पूरी तरह से धोए गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग सत्य को सुने और पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त करें। अब आप पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पा सकते हैं। मुझे इनके अलावा और भी कई प्रश्न मिले हैं और आप यूहन्ना के द्वारा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर के उसके लहू पर विश्वास करके उन सभी के उत्तर ढूंढ सकते हैं। अब हर कोई जो यीशु पर विश्वास करता है वह पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकता है, जिसे परमेश्वर ने अंतिम दिनों में सभी लोगों पर उंडेलने का वादा किया था। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। इस पुस्तक में पवित्र आत्मा की बहुत सारी जानकारी है। यह पुस्तक आपके प्रश्नों के उत्तर देने में आपकी सहायता करेगी। यदि आप पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया लेखक की मसीही पुस्तक की श्रृंखला की पहली 2 किताबों को पढ़ें। क्या वास्तव में आपका पानी और आत्मा से नया जन्म हुआ है? सियोल, हेफसिबा, 1999। पानी और आत्मा के सुसमाचार की ओर वापसी, सियोल, हेफसिबा, 1999। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करें। यदि आप लेखक के साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं तो आप पवित्र आत्मा के अंतर्निवास को पाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे।